ओम शांति। वैसे तो ललित भाई साहब को सब जानते ही है, वो सीए है। वैसे उनका व्यवसाय ही सीए है, तो आज का टॉपिक भी ऐसा है कि कैसे हमारा गॉडली बैंक होना चाहिए, कितना कैसा होना चाहिए और कैसे हमारा संकल्प कैसे हमारी जमा और उधार में जाते हैं, कैसा हमारा कर्म अकाउंट होना चाहिए, उसके बारे में हमें भाई साहब स्पष्ट करेंगे। और उनका पहला भी लेक्चर हो चुका है जो हमने पहला सुना था, तो फिर कल भी क्वेश्चन आंसर का जो उनका लेक्चर था, तो फिर हम पीछे बैठे सोच रहे थे कि भाई साहब का ये भी एक लेक्चर हो तो बहुत अच्छा। फिर उनको बैठे बैठे ही संकल्प आ गया और फिर आज वो रखा है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारी बातें हैं ज्ञान की, वो हमें स्पष्ट होती है। और कैसे हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि ये सच में ये ऐसे कर्म ऐसे कहाँ काउंट होता है, वो पूरा हमें भाई साहब स्पष्ट कराएंगे। ऐसे ललित भाई साहब का स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। आज की इस संध्या में हम सब आपस में मिलके एक ऐसे विषय पर मंथन करेंगे जो लौकिक रीति तो हम करते ही हैं, लेकिन अलौकिक रीति ऑटोमेटिक होता रहता है। लौकिक में तो हमको करना पड़ता है दुनियावी रीति तो, लेकिन ईश्वरीय रीति से, पारलौकिक रीति से ऐसा सुपर कंप्यूटर भगवान के पास है जो ऑटोमेटिक ये पूरा हिसाब रखता रहता है। उस गॉडली बैंक ये क्या है, कैसे काम करता है, उसके शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताऊं कि क्यों ये संकल्प मुझे आत्मा के मन में उठा और मैंने इस पर कुछ लिखा। क्या था, जब मैं अहमदाबाद में रहता था, प्रैक्टिस करता था, और साल में 15 दिन, 1 मास जैसा भी समय मिलता था तो मधुवन अपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑडिट की सेवा के लिए जाया करता था। तो वहाँ पे अकाउंट्स जो पूरा हमारा डिपार्टमेंट है उसके जो मुख्य भाई थे, निमित भाई, वो परम आदरणीय विश्व रतन दादाजी थे। आप में से शायद कोई कोई नहीं उनको देखा होगा। किन्होंने देखा है दादा को, विश्व रतन दादा को देखा है तो हाथ खड़ा करे। बेन जी के अलावा और किसी ने नहीं देखा। वैसे तो दादा ने 2007 में ही शरीर छोड़ा, लेकिन वो बड़े गुप्त पुरुषार्थी थे। 1936-37 में ही जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की, उसी समय विश्व रतन दादा जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे उन्होंने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तब से वो बाबा के अंग संग रह के विविध प्रकार की सेवाएं सारी की। और फिर जब मैं मधुवन में जाना शुरू किया था तो उस समय वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुख्य निमित्त भाई के रूप में थे। तो मुझे जब भी समय मिलता था सेवाओं से तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। बड़ों के पास बैठते हैं तो कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलती है, तो मैं 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी टाइम मिलता था दादा के पास जाके बैठता था और दादा से कोई न कोई बात पे रूरियान करता था, ज्ञान चर्चा करता था, गहराई से समझने की कोशिश करता था। तो एक बार मैंने दादा से पूछा कि दादा, बाबा मुरली में कहता है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। मतलब भले इस यज्ञ की स्थापना 1936-37 में हो गई थी और तब से जो भाई बहने इससे जुड़े हैं वह ज्ञान योग तपस्या आदि कर रहे हैं, तो नेचुरली उन्होंने काफ़ी कुछ जमा किया है, वो काफ़ी सीनियर हैं, उनके अकाउंट में बहुत जमा हो गया है। लेकिन अगर कोई 1950 में आया, कोई 1970 में आया, कोई 1990 में आया, कोई 2000 में आया, कोई 2010 में आया, तो मतलब जो लास्ट में आते हैं उसके लिए भी बाबा ने एक स्लोगन बनाया है कि लास्ट सो फास्ट जा सकता है और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। तो मुझे थोड़ा संकल्प चलता था कि ये कैसे संभव होगा, तो मैंने दादा को अपने जो ये मन में थोड़ा संकल्प चलता था वो दादा को उन सामने रखा। मैंने कहा दादा ये कैसे संभव है, जो 50 साल से जो ज्ञान योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, जिसने तन मन धन का सहयोग दिया है, और जो अभी 5 साल हुए हैं, अगर सपोज अगले 5 साल तक और दोनों मेहनत करते हैं तो 50 वाले का 55 हो जाएगा साल एड होते हुए, और 5 वाले का 10 होगा तो भी 55 वाला ही आगे रहेगा, वो 10 वाला तो नंबर 1 कैसे लेगा। तो ये तो संभव नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा मुरली में कह रहा है, मतलब बात तो सत्य है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे समझाइए कि ये लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट कैसे जा सकता है। तो दादा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उससे मेरी बहुत क्लैरिटी हो गई। उन्होंने कहा ललित भाई एक थैला है, उस थैले में आप ऊपर से शक्कर डाल रहे हो, आप जैसे आधा किलो शक्कर लाके उस थैले में डाला, फिर 1 किलो शक्कर लाके उस थैले में डाला, उस थैले में नीचे एक छेद है, तो आप तो ऊपर से डाल रहे हो कि हाँ मैं शक्कर भरता जा रहा हूँ, थैला भर जाएगा, और नीचे से वो शक्कर धीरे 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 करके निकलती जा रही है। आप 15 दिन बाद, महीने बाद देखते हैं कि हाँ अब तो थैला भर गया होगा, जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी सी शक्कर है अंदर, तो सारी शक्कर तो निकल गई। क्यों निकल गई? वो लीकेज था, तो लीकेज में से निकल गई। तो मैंने कहा दादा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये इसका कर्मों के हिसाब किताब और उससे क्या कनेक्शन है? तो बोले कोई 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से ज्ञान योग सेवा कर रहा है, मतलब उसका वो जमा हो रहा है, डिपॉजिट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर उसने परमात्मा ने जो नियम मर्यादाएं बताई है वो उस पर नहीं चला, उसमें उसने कमियां रखी, तो वो लीकेज है। तो उस लीकेज में से फिर उसका एक तरफ जमा हो रहा है, लीकेज में से निकलता जा रहा है। और कोई 5 साल से ही आया ज्ञान में, लेकिन 5 साल से आके भी उसने अपने आप पर अटेंशन रखा, और अटेंशन रख के जितना लीकेज सारे बंद कर दिए और जमा ही करता रहा, लीकेज सब बंद कर दिया उसने, तो जब विनाश होगा और जब धर्मराजपुरी में सबका चिट्ठा खुलेगा, ऑटोमेटिक होगा, कि कोई बैठा नहीं है वहां पे, सब ये ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे बताया, सुपर कंप्यूटर है बाबा के पास, तो उसमें पद किसको ज्यादा मिलेगा? जिसका बचत ज्यादा है, जिसने ज्यादा जमा किया है वो नहीं, लेकिन जिसकी बचत ज्यादा है। तो लीकेज वाले का क्या हो गया? जमा तो हुआ लेकिन लीकेज में से निकल गया, और जिसने लीकेज बंद कर दिया तो उसका वो जमा रहा, तो उसकी बचत ज़्यादा हो गई। तो जिसकी बचत ज़्यादा होगी उसको ऊंच पद मिलेगा, मतलब वो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट चला जाएगा। तो मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी ध्यान देने की बात है, सारे लीकेज बंद करो तुरंत, नहीं तो एक तरफ जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लीकेज में से निकलता जा रहा है। तो मेरा थोड़ा उस पे मंथन चला। उसी समय, मतलब उसके बाद जब बाबा की सीजन आई, तो बाबा की एक मुरली बहुत अच्छी उस पर चली, बाबा की एक वाणी चली, वो 31 दिसंबर 2001 को जो बाबा ने मुरली चलाई थी, उस मुरली में बाबा ने बताया सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। 31 दिसंबर की मुरली है ना, तो वर्ष पूरा हो रहा है, नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो बाबा ने सबका अकाउंट देखा कि पुराने वर्ष में क्या जमा उधार है। क्या देखा बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या देखा बाबा ने? फिर बाबा ने कहा कि जान तो गए हो कितना बचत है, हर एक अपने अपना तो जानता है कि मेरी कितनी बचत है, तो जान तो गए हो। बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो बाबा ने बताया कि इस खजानों को जमा करके हमारा अपनी बचत का खाता बढ़ाना है। तो अब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, अच्छे बिजनेसमैन, होशियार बिजनेसमैन, उनको ये बहुत अक्कल होती है। वो रोज क्या करते हैं, अपना रात को हिसाब चेक कर लेते हैं, आज कितना बिक्री हुआ और अंदाज से इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो रोज हिसाब चेक कर लेते हैं। जो सर्विस वाले होते हैं उनको तो भाई हर महीने सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी के हिसाब से उनका काउंटिंग होता है, लेकिन बिजनेसमैन का रोज हिसाब होता है शाम को कि आज कितनी बचत हुई, आज कितना व्यापार हुआ। तो ये सब चिंतन करते करते मुझे ये बैंक का कंसेप्ट ध्यान में आया। मैंने कहा जैसे ये दुनिया में बैंक है, ऐसे ही इसी प्रकार ये कर्मों का भी एक खाता जो ईश्वरीय बैंक है उसमें जमा होता है कहीं ना कहीं। तो उस पर मैंने मंथन करके ये पूरा लिखा, तो मैंने इसका नाम दिया कि ईश्वरीय बैंक। अब ये बहुत विशेष बैंक है, गॉडली बैंक जो है ये बहुत विशेष बैंक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत हाई है। उस दुनिया की बैंक में इंटरेस्ट रेट 3.5% से लेके 7-9% तक का होता है, लेकिन इसमें तो बहुत हाई है, हजार गुना पदम गुना ऐसा इंटरेस्ट रेट है इस बैंक में। दूसरा, इसमें भी जमा करने की अलग अलग बाबा स्कीम निकालता रहता है। जैसे उस बैंक में स्कीम निकलती है ना कुछ, दीपावली पे कोई स्कीम निकलेगी, राखी पे कोई स्कीम निकलेगी, तो बाबा भी यहाँ भी जमा करने के लिए अलग अलग स्कीमें निकालता रहता है जिसमें हम जमा कर सकते हैं, नई नई FDI बना सकते हैं, ऐसे सब। फिर ये बैंक जो है वो टोटल सेफ है। वो बैंक तो कब फेल हो जाता है पता नहीं लगता है। गुजरात में तो बहुत से कोऑपरेटिव बैंक फेल हुए हैं, बहुत से लोगों के पैसे डूब गए, लेकिन ये बैंक टोटल सेफ है, बिल्कुल इसके डूबने की कोई भी संभावना नहीं है, इतना सेफ है ये बैंक। और वो बैंक का तो टाइम है कि भाई वो 10 बजे खुलेगा, 2 बजे तक कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाकी फिर कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा वो सब। लेकिन ये ईश्वरीय बैंक 24/7 की स्कीम में चलता है, 24 घंटे इसका कारोबार चलता है, जमा उधार इसमें चलता ही रहता है, 24 घंटे ये चलता ही रहता है। फिर इसमें आपको कोई गारंटर या आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। उस बैंक में तो गारंटर, इंट्रोड्यूसर आदि सब की जरूरत पड़ती है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आपका खाता खुल गया और आप खुद ट्रांजेक्शन करो इसमें अच्छी तरह से। और उस बैंक में तो जो रिटर्न मिलता है वो इसी जन्म में मिलता है। सपोज आपका 1,00,000 रुपया बैंक में जमा है और आपका शरीर छूट गया, आपने नया जन्म जाके दूसरे किसी घर में जन्म लिया, फिर आप 5-10 साल के हुए, फिर बैंक में गए, बोले भाई मेरे पहले वाले जन्म का 1,00,000 रुपया इसमें जमा है, मेरे को वापस दो, तो वो बैंक वाला देगा? देगा बैंक वाला? यहाँ तक कि इस जन्म में भी पैसा बैंक में जमा है और शरीर छूट गया तो हमारे लिए तो वो गया पैसा, पीछे वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कैसे मिलेगा वो अलग बात, लेकिन हमारे लिए तो वो यूजलेस हो गया, वो पड़ा का पड़ा ही रह गया। लेकिन इस ईश्वरीय बैंक में तो ये जन्म में तो फल मिलता ही है, लेकिन जन्मों जन्म तक इसका फल मिलता रहता है। ऐसा ये ईश्वरीय बैंक है, जो अगले जन्मों में भी फ्यूचर जन्मों में भी इसका फल मिलता रहता है। अच्छा, इसमें क्या क्या हम जमा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जमा कर सकते हैं? तो तन से जमा कर सकते हैं, मन से जमा कर सकते हैं, धन से जमा कर सकते हैं, संबंध से जमा कर सकते हैं, वाचा से जमा कर सकते हैं, साधन से जमा कर सकते हैं, स्थान से जमा कर सकते हैं। इतने प्रकार से हम इसमें जमा कर सकते हैं। अच्छा, उस बैंक में तो हम रुपया जमा कर सकते हैं, डॉलर जमा कर सकते हैं, पाउंड जमा कर सकते हैं, यूरो जमा कर सकते हैं। इस बैंक में क्या जमा होता है? इसमें तो रुपया तो जमा नहीं होता है। इस बैंक की करेंसी है दुआएं, दुआएं इस बैंक की करेंसी है। आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ में नहीं आता फिजिकली, कहते हैं ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, लेकिन आत्मा के साथ दुआओं का जो पूरा एक ओरा है, पुंज है, वो उसके साथ जाता है। और आत्मा जहां भी अगला जन्म लेती है वो दुआएं उसके साथ एक्यूमुलेटेड होती है, और उसके कारण से कोई रोड पर जन्म लेता है, कोई महलों में जन्म लेता है, कोई जन्म लेता है तो कोई हाथ पैर में कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है, शरीर के किसी भी अंग में प्रॉब्लम होती है, कोई बिल्कुल हष्ट पुष्ट जन्म लेता है, क्योंकि वो दुआओं का खाता उसके साथ साथ जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें दुआएं जमा होती है ईश्वरीय बैंक में। फिर दुआएं किन किन से ले सकते हैं? हम खुद से ले सकते हैं, हम बाप दादा से, स्वयं भगवान से ले सकते हैं, हम लौकिक परिवार से ले सकते हैं, हम अलौकिक परिवार से ले सकते हैं, अन्य आत्माएं जो भी हमारे संपर्क में आती है उनसे ले सकते हैं, पशु पक्षियों से ले सकते हैं, प्रकृति से ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग सभी से दुआएं ले सकते हैं, और वो सब दुआएं हमारे खाते में जमा होती है। अब एक और समझने की बात, उस बैंक में और इस बैंक में, जैसे उस बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट आदि आदि अकाउंट होते हैं। इस प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और भी होते होंगे, लेकिन ये चार मैंने ब्रॉडली जो है निकाले हैं कि इस प्रकार के चार अकाउंट होते हैं इसमें भी। करंट अकाउंट जो होता है वो प्रायः बिजनेसमैन यूज करते हैं, क्योंकि दिन में कई बार जमा करते हैं, कई बार उसमें से निकालते हैं, तो वो करंट अकाउंट हो गया। तो करंट अकाउंट की क्या विशेषता है कि दिन में कई बार जमा होता है, कई बार निकाल सकते हैं, और करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, चाहे कितनी भी रकम जमा है लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर करंट अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है, मैं ईश्वरीय बैंक की बात कर रहा हूँ आपको, करंट अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है वो इसी जन्म में मिलता है। उसमें अगर जमा रह गया तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो इसी जन्म में लिया दिया खत्म हो जाएगा करंट अकाउंट का। और अगर जितना जमा है उससे ज़्यादा आपने निकाल लिया तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, लोन हो जाएगा आपके ऊपर करंट अकाउंट में। ये गोडली बैंक में भी इसी प्रकार से होता है। दूसरा, बचत खाता। बचत खाता में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, व्यवहार होता है, वो करंट अकाउंट की तरह दिन में बहुत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे महीने में 2-5 बार हो गया, इस प्रकार से उसमें कम ट्रांजेक्शन होते हैं बचत खाते में। उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1000 गुना इंटरेस्ट मिलता है। दुनिया में कितना मिलता है? 3.5% या 4% मिलता है, यहाँ पे 1000 गुना इंटरेस्ट मिलता है बचत खाते में। और इसका रिटर्न जो मिलता है ना, वो अगले एक जन्म तक मिलता है। जैसे अभी संगम युग में हमारा शरीर छूटा और हमने नया जन्म लिया, तो उसमें उसका रिटर्न मिलेगा जो अभी हमारा जमा किया हुआ है बचत खाते में, वो उसमें रिटर्न मिलेगा। और अगर बचत खाते में ज़्यादा जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा जमा हो जाता है, तो वो हमारा टाइम डिपॉजिट सावधि अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, सेविंग अकाउंट से टाइम डिपॉजिट अकाउंट में चला जाएगा। फिर तीसरा खाता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता। इस सावधि जमा खाते में पूरे साल में दो चार बार ही व्यवहार होता है, इतने कम ट्रांजेक्शन होते हैं, पूरे साल में दो चार बार व्यवहार होता है। इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? पदम गुणा। करंट अकाउंट में 0%, सेविंग अकाउंट में 1000 गुना, और सावधि डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट में पदम गुना इंटरेस्ट मिलता है। और इसका रिटर्न कितने जन्म तक मिलता है? 21 जन्म तक इसका रिटर्न मिलता है। अभी जो भी हम जमा करेंगे 21 जन्म कौन से? सतयुग के और त्रेता युग के मिला के, इस संगम युग सहित 21 जन्मों में इसका रिटर्न हमको मिलता है। और अगर आपने वो टाइम डिपॉजिट में रखा लेकिन प्री मैच्योरिटी निकाल लिया, प्री मैच्योरिटी आपने वो डिपॉजिट वापस निकाल ली, तो कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, सारा ब्याज लैप्स हो जाएगा, उस पेनल्टी के रूप में सारा ब्याज चला जाता है, तो कुछ नहीं मिलता है। चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में तो पूरे ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बने तब से लेके जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक बहुत कम डिपॉजिट होती है, मतलब बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें, 5-10 ट्रांजेक्शन समझो हो जाएंगे, 20 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, इतने कम ट्रांजेक्शन होते हैं फिक्स डिपॉजिट में। और उसमें ब्याज कितना मिलता है? पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है। कितना? पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है। और उसका रिटर्न कितना मिलता है? कितने जन्म तक? 84 जन्म तक पूरा इसका रिटर्न मिलता है। जो संगम युग में हमने जमा कर दिया फिक्स डिपॉजिट, तो पूरे 84 जन्म कलयुग के अंत तक उसका रिटर्न हमको मिलेगा, इतना जबरदस्त अकाउंट है इसमें जमा हो गया तो। और अगर जमा करने के बाद आपने वो FD वापिस निकाली तो मूल भी गया और ब्याज भी गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार जमा करने के बाद इसमें से निकाल दिया था, इसलिए केवल इसमें जमा ही करने का होता है। तो ये चार अकाउंट अलग अलग प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जमा क्या क्या होता है और निकलता कैसे कैसे है, वो एक एक अकाउंट का हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला चालू खाता। चालू खाते में क्या जमा कर सकते हैं? चालू खाते की क्या विशेषता थी? दिन में बहुत बार जमा करते हैं, बहुत बार निकाल भी लेते हैं। तो इसमें क्या क्या जमा होता है चालू खाते में? सबसे पहला है दैनिक सेवा कार्य, जो रूटीन में आपको सेवाएं मिली हुई है, जैसे किसी को सेवा मिली है कि क्लास में आके कुर्सियां लगा देने का, किसी में किसी को सेवा मिली है कि क्लासरूम की सफाई कर देने का, बार की सफाई कर देने, किसी को सेवा मिली है फल सब्जियां लाने का, किसी को सेवा मिली है कोई आवे तो उसको समझा देने का, ऐसे ऐसे जो रूटीन की सेवाएं होती है, तो वो रूटीन की जो भी हम सेवाएं करते हैं वो सब करंट अकाउंट में जमा होती है। फिर हाजी का पाठ, अगर पक्का है हमारा हाजी का पाठ, मतलब बड़ों ने किसी ने कुछ कहा तो हमने हाजी करके उनको रेस्पोंड किया, पॉजिटिवली रेस्पोंड किया, वो भी हमारे करंट अकाउंट में जमा होता है। फिर मन का मौन रखने का अभ्यास किया हमने, मन का, मन को ज़्यादा नहीं चलाया व्यर्थ, मौन रखने का अभ्यास किया, वो भी इसमें जमा होता है। फिर मधुर बोल से बात किया, किसी से मिले तो मीठे बोल के साथ हमने उनके साथ बातचीत किया, तो वो भी हमारे करंट अकाउंट में जमा होता है। और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया, हम आत्मा है या भृकुटी के बीच में बैठे हैं, इस कॉन्शियसनेस में रहकर हमने व्यवहार करने का जो अभ्यास किया वो भी इसमें जमा होता है। फिर सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग किया, पहला थॉट जैसे ही बेड से उठे बाबा से गुड मॉर्निंग किया, पहला थॉट, वो भी इसमें जमा होता है। फिर दिन भर में बाबा ने जो ट्रैफिक कंट्रोल का योग बताया है, सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 बजे और 7:30 बजे और हर घंटे 1 मिनट, ये जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल के योग बताए हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल के योग भी टाइम पर किए तो उसका भी बच इसमें करंट अकाउंट में जमा होगा। और रात को सोने से पहले बाबा से बहुत प्रेम भरा गुड नाइट किया और बाबा से छुट्टी लेके जैसे बाबा के साथ सोए तो भी हमारे करंट अकाउंट में वो जमा होता है। ये तो हो गया जमा हुआ, अब इसमें निकलता लीकेज क्या है, कहाँ से इसमें कम हो जाता है, तो उसमें आलस्य एवं अलबेलेपन के कारण। आपको ड्यूटी मिली हुई है कि भाई आपको ये काम करना है, अब टाइम क्लास शुरू होता है सुबह 6:30 बजे और आप आ रहे हैं 6:30 बजे, अब कब तो कुर्सी लगाएंगे, कब क्या करेंगे, तो जो आलस्य और अलबेलापन के कारण होता है वो करंट अकाउंट में से माइनस हो जाता है। फिर कार्य समय पर नहीं करने के कारण, बहन जी ने बोला कि भाई ये लाना है बाजार से और ये करना है और इतनी बजे चाहिए था और हम आ रहे हैं आराम से, दूसरे की बातों में लग गए, ये हमारे करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। फिर कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव, बहन जी ने लिस्ट दिया कि ये 10 काम करके आने 10 करने, 3 करके आ गए, हाँ बहन जी अब मैं आ गया, भूल गया था मैं, तो वापस क्या क्या है बताओ मुझे, तो वापस टाइम वेस्ट किया तो उस वो हमारे करंट अकाउंट में से माइनस। मतलब ये छोटे मोटे जो है ना जमा उधार इसमें होता ही रहता है इस करंट अकाउंट में। फिर आवाज से हंसना, ये बाबा ने मुरली में बहुत बार बताया है कि अगर हम जोर से हंसते हैं ना तो वो थोड़ा देह अभिमान की निशानी है। बाकी आपने जो भी आप अव्यक्त बाप दादा से शांतिवन में बाप दादा की पधरावणी के समय आप गए होंगे तो देखा होगा कि बाबा कोई बात बताता है तो सभा हंस लेती है लेकिन बाबा मुस्कुराता रहता है, तो मुस्कुराना रॉयल्टी है लेकिन जोर से हंसना वो रॉयल्टी नहीं है, वो हमारे करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। और अभी निर्वेर भाई जी ने एक बहुत बात अच्छी बात जो हमको बताई कि अच्छी तरह से रॉयल्टी से वही मुस्कुरा सकता है जिसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें रूहानियत होती है, उस मुस्कुराहट में रूहानियत होती है, एक अलग ही उसकी रूहानियत होती है। फिर दूसरों से दुख लेना, बाबा का एक स्लोगन है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, तो हमको सहयोग करना है लेकिन दुख नहीं लेना है। दुख कैसे लेते हैं, किसी ने कुछ बोला तो 6 महीने तक वो उस बात को याद रख के, उसने मेरे को उस दिन ये बोल दिया, उसने मेरे को उस दिन ये बोल दिया, 10 लोगों को कहेंगे उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ये दुख लेने की बात है। अरे कोई दे रहा है गंदी चीजें, आपको पसंद नहीं तो आप लो नहीं ना, आप लेते क्यों, गंदी चीजें तो नहीं लो, बोलो भाई मुझे माफ करो नहीं चाहिए, उसका उसके पास रहा, हम तो फ्री हो गए उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, लेके घूमते रहते हैं और उसको 6 महीने तक यहाँ जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट जगह को हम दूसरे को बिठा के उसमें बगैर किराए हम दूसरे को ये जगह दे देते हैं और उसमें दूसरा बैठा रहता है, हम उसको याद करते रहते हैं, तो इस प्रकार से दूसरे के दुख लेने से भी माइनस हो जाता है। फिर बहानेबाजी, कोई सेवा मिली, कुछ डायरेक्शन मिला तो excuse.com पर जाकर कोई बहाना निकाल लिया कि आज तो ये बात है, आज तो वो बात है, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वैसा हो गया, और बहानेबाजी कर लिया तो भी करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। और जोश या रोब में आकर बोलना, जैसे मधुर बोलने से जमा होता है ऐसे जोश में या रोब में आके बोला तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसमें से लीकेज होता है। तो इस प्रकार से ये करंट अकाउंट का। अभी सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कम होते हैं, 1000 गुना ब्याज मिलता है और अगले एक जन्म तक इसका रिटर्न मिलता है। इसमें क्या क्या जमा होता है, कैसे कैसे जमा होता है, तो जो दैनिक सेवा कार्य मिला हुआ है उस दैनिक सेवा कार्य को में कोई न्यूनेस, कोई नवीनता की आपने, कोई भी नए तरीके से किया जिससे सब खुश हो गए, सबका मन प्रसन्न हो गया, सबका टाइम बच गया, या ऐसा कुछ भी आपने नई चीज की उसमें, वो आपके बचत खाते में जमा हो जाएगा। फिर अपनी धारणाएं जिनके कारण संपर्क में आने वाली ब्राह्मण आत्माएं निर्विघ्न आगे बढ़ती जाए, मतलब आपने आपकी इतनी अच्छी धारणाएं हैं, इतने अच्छे गुण हैं आप में कि आपकी संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही हैं उनके भी जो कोई दुख दर्द है वो दूर होते जा रहे हैं, केवल आपके संपर्क में आने से वो शांत हो रही है, वो खुश हो रही है, तो वो भी आपके बचत खाते में जमा हो जाएगा। फिर तन की सेवा से सबको सुख पहुंचाना, हार्ड वर्क करना, ऐसी कोई जैसे प्रोजेक्ट आ गया, प्रोग्राम आ गया, तो उसमें आपने हार्ड वर्किंग किया, सबको सुख पहुंचाया, तो उसमें आपका बचत खाते में जमा हो जाएगा। फिर चाल चलन देवताओं जैसा, एकदम रॉयल्टी। आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ इसके लिए। एक आप में से पांडव भवन अगर कोई गए हैं ऊपर माउंट आबू में, तो पांडव भवन में एक आंगन बना हुआ है अपना, उस आंगन के सामने बाबा का रूम भी है, फिर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो मेडिटेशन हॉल है। तो एक दिन, ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 1975-80 की बात है, तो एक भाई हमारे जैसा थोड़ा यंग भाई, तो वो मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो दो दो तीन तीन सीढ़ी एक एक साथ जंप करके चढ़ रहा था, जैसे स्टेप है ना, दो तीन स्टेप को मतलब छोड़ के फिर वो ऊपर जंप करके ऐसे चढ़ रहा था। तो किसी ने देख लिया, देखा तो उसने जाके जो बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, उनको जाके बोला कि दीदी देखो वो भाई ऐसे ऐसे स्टेप चढ़ रहा था, दो दो तीन तीन स्टेप्स को जंप दे के चढ़ रहा था। दीदी ने बोला ठीक है भैया, उसको तो दीदी ने ऐसा बोल दिया। फिर दीदी ने उस समय वो भाई को बुला के कुछ नहीं बोला। शाम को दीदी आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी और वो भाई जो स्टेप चढ़ रहा था ना, वो भाई वहाँ से गुजर रहा था, तो दीदी ने उसको बुलाया, भाऊ इधर आओ, उसको बुलाया पास में, भाऊ आप कितने अच्छे हो, कितने आप पुरुषार्थ करते हो, आपका ज्ञान योग कितना अच्छा है, आप ज्ञान का मंथन भी बहुत अच्छा करते हो, आपका बहुत ही अच्छा पूरा चार्ट है, ऐसे उसकी बहुत अच्छी महिमा की, जो उसकी विशेषताएं थी, दीदी ने उसको सुनाया। फिर कहा भाऊ अभी मैं आपको एक कुछ काम करने को कहूँगी तो आप करोगे? बोला जी दीदी आप बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। तो क्या अच्छा आप ये मुझे ये बताओ कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण है वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे, आप देखें मुझे चढ़ के बताओ। तो वो बोला हाँ जी दीदी, ऐसा करके वो सीढ़ियों के पास गया मेडिटेशन हॉल में, और धीरे धीरे एक स्टेप पे पैर रखा, फिर दूसरे स्टेप पे पैर रखा, फिर तीसरे स्टेप पे पैर रखा, ऐसे धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण जैसे रॉयल्टी से चढ़ते हैं ना, वो रॉयल्टी के संस्कार उसके अंदर इमर्ज हुए, तो वो इस प्रकार से वो चढ़ने लगा। 5-7 स्टेप चढ़ा और उसको सुबह वाली बात याद आ गई मन में एकदम से कि मैं सवेरे तो ऐसा चढ़ रहा था। तुरंत उसको रियलाइज हुआ कि दीदी ने मेरे को ये एक्सरसाइज क्यों दी। तुरंत दीदी के पास गया, दीदी सॉरी मैंने सवेरे इस प्रकार से थोड़ा मैं चढ़ गया था, ऐसे ऐसे सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो देखो बड़ों का जो शिक्षा देने का तरीका होता है ना, वो भी रॉयल होता है, वो शिक्षा भी रॉयल तरीके से देते हैं और उसको रियलाइज भी अच्छी तरीके से हुआ। तो हमारा चाल चलन जो है वो देवताओं जैसा, तो ये एक बहुत, तो हमारे बचत खाते में जमा हो जाएगा। बेहद की शुभ भावना एवं शुभ कामना, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता हो, हमको कोई आके कहे आपके लिए तो वो ऐसा बोल रहा था, आपके लिए तो वो ऐसा कह रहा था, लेकिन हम उसको डोंट केयर करते हुए उस हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना शुभ कामना रखें सदा के लिए, तो हमारे बचत खाते में जमा होता रहेगा। फिर धन से विशेष सेवा करते हैं हम, धन से विशेष सेवा करते हैं, वो भी हमारे बचत खाते में जमा होगा। फिर मधुवन महायज्ञ में सेवा करते हैं, देखो सेंटर पर सेवा करना अलग बात है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन मधुवन महायज्ञ बीज है, अगर उस बीज में आप सेवा कर रहे हो तो उस बीज का फल पूरे वृक्ष तक जाता है, हर टहनी तक जाता है, हर पत्ते तक जाता है। इसलिए मधुवन महायज्ञ में कोई सेवा करता है तन से मन से धन से कैसे भी, तो भी उसका विशेष बचत खाते में जमा होता है। धन के यज्ञ की बचत करना, जैसे आपको बहन जी ने कहा कि आप मार्केट में जाके ये पंखा खरीद के लाइए, और वो पंखा 1200 रुपये का आता है, आपको 1200 रुपये भी दे दिए बहन जी ने कि आप लेके आइए। आप मार्केट में गए, दुकान पर गए, दो दुकान में आपने भाव पूछा, फिर कोई आपको दुकानदार अच्छा लगा तो उसके साथ आपने थोड़ी बातचीत की, ज्ञान की बातचीत की, संस्था का परिचय दिया, बताया कि भाई हमको आश्रम के लिए ले जाना है, कैसे भी करके उसको कन्विंस किया और आप वो पंखा 800 रुपये में लेके आए 1200 की जगह। तो जो ये 400 रुपये की बचत हुई, ये बचत भी आपके बचत खाते में जाएगी। तो धन की जो बचत करेंगे ईश्वरीय कार्य की, वो भी बचत खाते में जाएंगी। फिर दिन भर स्वमान के नशे में रहना, बाबा ने हमको अनेक स्वमान दिए, बहुत प्रकार के स्वमान दिए हैं, मैं करण करावन हार हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं शांति का मास्टर, शांति का सागर हूँ, ऐसे ऐसे जो अनेक प्रकार के स्वमान दिए हैं बाबा ने, उन स्वमान के याद में जो रहता है दिन भर, उसका भी बचत खाते में जमा होगा। फिर मुरली क्लास जो हमारा होता है, उसमें जो रेगुलर अटेंड करता है, वो भी बचत खाते में जमा होगा। फिर भोजन जो है वो पवित्र बना हुआ बाप परमात्मा की याद में भोजन करेंगे, वो भी हमारे बचत खाते में जमा होगा। और विशेष वाचा के द्वारा, अपनी बोल के द्वारा जो विशेष सेवा हम करते हैं, वो भी बचत खाते में जमा होता है। अब इसमें से माइनस क्या क्या होता है, ये तो जमा देख लिया हम, इसमें से माइनस क्या क्या होता है, दैनिक सेवा कार्य को अरुचि व अनमने भाव से कर लेना। आपको कोई सेवा मिली हुई है कि भाई आप ये सेवा करना, जैसे सब्जी लाने की सेवा मिली है, तो गए जो पड़ा है वो जैसी तैसी पुरानी है तो लेके आ गए, भाई मैं चलो सेवा करनी है ना, हो गई पूरी मेरी सेवा। जो भी काम करना है, मतलब किया नहीं किया, जैसे एक बार कैसे भी काम उतारने जैसा कर दिया, वो आप बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अपने गलत व्यवहार से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। विश्वरतन दादा हमको समझाते थे कि आप किसी के घर गए, आप बैठे हैं उनके रूम में, वो कहीं कुछ लेने गए, आपने वहाँ डायरी रखी हुई है तो उसको, या कोई पुस्तक रखी है, आपने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा पढ़ा और फिर उसको दूसरी जगह रख दिया। अब आपने यहाँ से लिया और किसी दूसरी जगह पे उसको रख दिया, अब वो व्यक्ति आया, उसको उस किताब की ज़रूरत है, आप तो चले गए, फिर आपसे वो व्यक्ति मिल लिया, आप चले गए, फिर उस जब उस व्यक्ति को किताब की ज़रूरत पड़ी तो वो ढूंढ रहा है, जहाँ उसने रखी थी वहाँ ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही है, फिर उसको काफ़ी ढूंढने के बाद दूसरी जगह मिलती है, तो उसका जो ये टाइम वेस्ट हुआ और जो संकल्प वेस्ट हुए, वो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। जिसने उसको दूसरी जगह पे रखी, उसके बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। हम दूसरों के संकल्प व्यर्थ चलाने के निमित्त बनेंगे तो भी हमारा खाता माइनस हो जाएगा, इतना सूक्ष्म है ये खाता, इतना ध्यान रखना होता है। फिर सेवा में असावधानी व लापरवाही, पानी का ग्लास रह रहे गिरा दिया, क्रॉकरी है फोड़ दिया, ऐसे कहीं भी ठोकर लग गई, कुछ भी कर दिया, तो ये निशानी है कि योग में नहीं है, हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा बचत खाते में से। चाल चलन असुरों जैसा, जैसे एक तो आपको वो एग्जांपल बताया मैंने, दूसरा उसी प्रकार से एक एग्जांपल है कि हमारी ये साकार बाबा जब थे तब की बात है, 1969 से पहले की, जो हमारी मनोहर दादी जी थी, तो वो एक बार पंजाब से बाबा से मिलने के लिए आ रही थी ट्रेन में आ रही थी, तो उसी उनके वो उसी कंपार्टमेंट में एक जज और उनकी वाइफ भी माउंट आबू घूमने के लिए जा रहे थे। तो दादी तो बहुत बोलने वाली थी, तो उनसे अच्छी बातचीत करके पहचान बना लिया, उसको बाबा का परिचय भी दिया, ज्ञान भी सुनाया, फिर कहा कि आप माउंट में रुकेंगे ना तो आप हमारे बाबा से मिलने आना, मैं आपको बाबा से मिलाऊंगा। तो वो बोले हम ज़रूर आएंगे। फिर वो बाबा से मिलने के लिए आए, तो बाबा से कोई मिल रहा था, तो दादी ने उनको बाहर जो वेटिंग के लिए दूसरा रूम था उसमें थोड़ा बिठाया और कहा कि 2 मिनट आप यहाँ बैठना, मैं आ रही हूँ, तब तक बाबा से जो मिल रहा है वो बात पूरी हो जाएगी, फिर हम चलेंगे अंदर। ऐसा कह के दादी गई, और 2 मिनट बाद जब वापस आई तो दादी ने कहा चलो अभी बाबा से मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो बाबा से मिल लिया। तो कि अच्छा आपने बाबा से मिल लिया, आप अंदर जाके आ गए? तो कि नहीं, वो बाबा ही इधर से गए। कि कहाँ गए? तो कि वो देखो वो जा रहे हैं बाबा। तो आंगन में दूर से देखा तो दादी ने देखा तो वो बाबा नहीं थे, विश्व रतन दादा थे। विश्व रतन दादा चलते थे तो बिल्कुल फरिश्ते की तरह चलते थे, एकदम जैसे फरिश्ता कैसे चल रहा उस प्रकार से वो चलते थे। वो बोलते थे तो जैसे वो शक्कर का ही बोल रहे हैं, ऐसा मीठा बोलते थे, इतना धीरे, इतना प्यार से और इतना मीठा बोलते थे वो। कभी हम उनके साथ हैंडशेक करते थे ना तो रुई जैसे हाथ थे, बिल्कुल रुई जैसे, हड्डियां है ही नहीं, ऐसे ऐसे उनके सॉफ्ट मुलायम हाथ थे। हमको मजा आता था उनसे हैंडशेक करने में, इतने रुई जैसे हाथ, बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप। तो वो जब निकले ना, तो वो जब निकले तो जज साहब किसको उन्होंने ओम शांति बोली, बहुत प्रेम से उनसे ओम शांति किया और फिर निकल गए। तो उन्होंने सोचा यही बाबा है। तो दादी ने कहा ये बाबा नहीं है, ये तो बाबा का बच्चा है। तो उन्होंने कहा अगर बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसे होंगे? अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष किया तो वो तो जमा होता है, लेकिन अगर असुरों जैसा, वो जो दो दो तीन तीन स्टेप चढ़ने का काम किया असुरों जैसा, तो वो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। फिर व्यर्थ, नेगेटिव व असत्य बोल अगर हम बोलते हैं, व्यर्थ, नेगेटिव और असत्य बोल, वो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। फिर नेगेटिव संकल्प किसी के भी प्रति, चाहे अपने स्वयं के प्रति चाहे अन्य किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प किया, वो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए की उलझन में अगर हम उलझते रहे, उस उलझन में उलझे, तो भी हमारा बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। धन, यज्ञ के धन का अपव्यय करना, वो तो बचत करना तो हमारे बचत खाते में जमा हुआ, वेस्ट किया हमने तो क्या होगा, बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अमृत वेले सोए रहना, जब अमृत वेले बाबा की आज्ञा है कि उठ के हमको याद करना चाहिए, अगर उस समय हम सोए रहते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। मुरली क्लास में नहीं आना, जब परमात्मा ज्ञान सुना रहा हो और हम अलबेले होके नहीं सुने तो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। और अपवित्र भोजन अगर हम करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। तो ये हो गया बचत खाता। अभी है टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, जिसमें पूरे साल भर में मुश्किल से एक दो ट्रांजेक्शन होते हैं, इतनी कम डिपॉजिट, लेकिन 21 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है, पदम गुना ब्याज मिलता है। तो वो क्या है, उसमें क्या क्या जमा होता है? बाप समान चाल चलन चेहरा जिससे वारिस आत्माओं का जन्म हो, माना हमारे जीवन में इतनी रॉयल्टी हो जो हमें देखकर लोग ये कहे कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, हम भी ये सीखना चाहते हैं, हम भी जीवन में इतना शांत रहना चाहते हैं, हम भी जीवन में इतना खुश रहना चाहते हैं, उस प्रकार से वो बाबा के ज्ञान में आए तो वो हमारी टाइम डिपॉजिट हो जाएगी। फिर कोई नवीन सेवा जिससे सारा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित हो, मतलब आपने ऐसी कोई सेवा की जिससे पूरा ही अनेक लोग उससे लाभान्वित हो, जैसे कोई नया चित्र बनाए, जैसे ये चित्र बने हुए हैं ना बाबा के, ऐसे कोई नए ज्ञान के चित्र बनाए, कोई कोर्स बनाया, कोई पुस्तक लिखी, कोई विशेष सेवा का प्लान बनाया, जैसे अभी ये साइकिल यात्रा हुई, ऐसे कोई भी सेवा का प्लान विशेष बनाया, कोई भी चीज़ ऐसी विशेष सेवा का किया, तो उसमें क्या होता है, अनेक आत्माएं अपना भाग्य जमा करती है। तो जो अनेक आत्माएं भाग्य जमा करती है तो उसका कमीशन आपको मिलता है, सेवाएं वो कर रहे हैं, कमीशन आपको मिल रहा है, तो आपकी वो टाइम डिपॉजिट हो जाती है। फिर सुंदर सुंदर योग के गीत कॉमेंट्री आदि बनाना, उसके भी हमारा टाइम डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि वो वर्षों तक जो है वो सेवा करते रहते हैं। फिर हड्डी सेवा, अपना पूरा तन ईश्वरीय सेवाओं में हड्डी हड्डी लगा दिया, जैसे वो दधीची ऋषि के लिए कहते हैं कि अपनी हड्डियां भी व्रज बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए दे दी। तो ऐसी हड्डी सेवा अगर हम यज्ञ की करते हैं तो भी हमारा टाइम डिपॉजिट हो जाता है। फिर आवश्यकता के समय धन देना, जब खास जरूरत है और तब हमने धन से सेवा की, जैसे कोई मकान का काम चल रहा है सेंटर का और उसमें हम उस समय हमने धन की मदद की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रोग्राम होने वाला है और उसमें हमने धन की मदद की, तो विशेष टाइम डिपॉजिट में वो बन जाता है। और गुण एवं शक्तियों का दान करना, जैसे कोई गुस्से का स्वभाव वाला है लेकिन हमने अपनी धारणा से उसको शांत बना दिया, उसका स्वभाव शांत बना दिया, तो ये गुण दान हो गया। कोई बहुत होपलेस है उसमें हमने होप पैदा कर दी, तो ये शक्ति का दान हो गया। तो ऐसे जो गुणों और शक्तियों का जो दान होता है उससे भी हमारा टाइम डिपॉजिट हो जाता है। टाइम डिपॉजिट में से माइनस क्या क्या होता है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म कर लेते हैं, सोचा तब तक अलग बात थी लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म कर लिया तो वो हमारी टाइम डिपॉजिट में से माइनस हो जाता है। ऐसा कर्म जिससे ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान में चलना छोड़ दे, हमारा ऐसा कोई कर्म हो जाए कि जो बाबा के पास आ रहे हैं रोज क्लास करने, वो क्लास में आना बंद हो जावे, रूठ जावे, ऐसा कुछ हो जावे, तो भी हमारे अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस इस अकाउंट में से माइनस हो जाता है। नेक्स्ट है स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें पूरे अपने ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बने तब से लेके बहुत कम डिपॉजिट होता है, इसमें बहुत ही कम डिपॉजिट होता है। क्या क्या कैसे कैसे डिपॉजिट होता है इसमें और इसका रिटर्न कितना मिलता है, 84 जन्म, 84 बर्थ, मतलब पूरे चक्र में उसका रिटर्न मिलता है और ब्याज पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है उसका। तो क्या है ये फिक्स डिपॉजिट, यज्ञ में संपूर्ण समर्पण हो गए, अगर आप अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया ईश्वरीय सेवा में तो ये आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। 3 पैर पृथ्वी देकर ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगिक बनना, किसी का मकान पड़ा हुआ है और वो ऑफर करता है कि ये अभी मकान खाली है मेरा, तब तक आप इसमें अपनी क्लास चलाइए, और उस क्लास के द्वारा अनेक सेवा होती है, वो आपकी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। भगवान को पहचानना एवं उसका बनना, जब हम ये फिक्स डिपॉजिट तो सभी की है क्योंकि हम सब बाबा के बने हैं, तो ये फिक्स डिपॉजिट तो सबकी है ही है, एक फिक्स डिपॉजिट। और देखो इसी का फल है जो हम अंतिम जन्म तक भी दुनियावी आत्माओं के मुकाबले हमारे अच्छा है हमारा जीवन, फिर भी 84वें जन्म में भी हमारा जीवन अच्छा है 83वें जन्म में। तो इस प्रकार से ये फिक्स डिपॉजिट तो सबकी है ही है। फिर मनसा संपूर्ण श्रीमत अनुसार हो, मनसा जो है हमारी संपूर्ण श्रीमत अनुसार, जरा भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं हो तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट जमा होगी। संपूर्ण ट्रस्टी, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो लेकिन ट्रस्टी भाव हो और ट्रस्टी भाव के साथ हम उस धन का उपयोग करते हो तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट रहेगी वो। और अन्य आत्माओं को समर्पित कराना, आपका भाई है, बहन है, बेटी है, कोई भी पारिवारिक सदस्य है, आप उसको निर्विघ्न बनाते हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हैं, उसको छुट्टी देते हैं और उसको भी समर्पित करते हैं तो भी आपकी भी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी, क्योंकि वो उसके द्वारा जो सेवाएं होगी उसमें आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये कमीशन का बिजनेस है, कमीशन एजेंट है, वहाँ से भी मिलता है यहाँ से भी मिलता है, तो आपको कमीशन मिलेगा उनकी सेवाओं के द्वारा भी। अब फिक्स डिपॉजिट में से निकलता कैसे है, और पता है ना एक बार बनाने के बाद अगर निकाला उसमें से तो मूल भी जाएगा और ब्याज भी जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट में कैसे निकलता है, ट्रेडर बन जाना, माना एक बार बाबा के बने उसके बाद हम बाबा के यज्ञ की बदनामी करवाते हैं, अगर ऐसा कोई कर्म करते हैं खास तो, मतलब ट्रेटर छोड़ देते हैं, एक फिर विरोधी बन जाते हैं, तो वो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। उसके बाद 3 पैर पृथ्वी देके वापस लेना, किसी ने मकान गिफ्ट में दे दिया, रजिस्ट्री भी हो गई और फिर कहे नहीं अब 10 साल हो गए अभी हमारा मकान वापस दो आप हमको, तो वो सारी सेवाएं डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ की, और दे के वापस ले लिया तो फिर वो चला जाएगा, आपका फिक्स डिपॉजिट ख़त्म हो जाएगी। फिर ब्राह्मण कुल को बदनाम करना, कोई ऐसा कार्य कर लिया कि जिससे बाबा की बदनामी हो, पूरे यज्ञ की बदनामी हो, संस्था की बदनामी हो, तो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। फिर ऐसा कोई कर्म करें जिससे अन्य समर्पित आत्माएं यज्ञ छोड़कर चली जाए, कोई हम ऐसा कार्य करें कि जो इस संस्था में समर्पित है वही समर्पण छोड़ के चला जावे हमारे कारण से, तो वो हमारी फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। बाबा को फारगति देना, अगर हम खुद ही संस्था छोड़ के चले जाते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं बाबा को, तो जो फिक्स डिपॉजिट बनी थी बाबा की बनने से, जो फिक्स डिपॉजिट बनी थी वो डाइवोर्स देने से खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चारों अकाउंट में जमा और उधार होता रहता है। अब हम रोज रात को सोने से पहले ये चेक करें कि हमारे करंट अकाउंट की पोजीशन क्या है। पासबुक सबकी अलग अलग है, पासबुक भरवा लेवे, रोज रात को पासबुक भरवा लेवे कि आज के बचत के खाते की पोजीशन क्या है, जमा हुआ, उधार हुआ, उधार हुआ तो कहाँ कहाँ उधार हुआ, कल से उस पर अटेंशन रखेंगे, और जमा हुआ तो कितना जमा हुआ, और अभी जितनी डिपॉजिट है चाहे करंट अकाउंट में, चाहे सेविंग अकाउंट में, चाहे टाइम डिपॉजिट, चाहे फिक्स डिपॉजिट, क्या इतनी डिपॉजिट में अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे सत्युग में श्रेष्ठ पद मिल सकता है, वो चेक करें कि जितनी डिपॉजिट मेरे पास है इससे मेरे को पद कौन सा मिलेगा। तो रोज बैलेंस चेक करें अपना और बढ़ाते जाए, और फिक्स डिपॉजिटें भी बढ़ावे, क्योंकि 84 जन्म तक उसका रिटर्न मिलना है, तो लक्ष्य रखें कि हाँ मुझे फिक्स डिपॉजिट भी बढ़ाना है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको अटेंशन रखेंगे तो हमारा ये जो खाता है ये बढ़ता जाएगा, और इसका प्रत्यक्ष रिजल्ट क्या है, खुशी। जितना देखो दुनिया में भी जिसका जितना बैंक बैलेंस होता है ना वो कितना निश्चिंत होता है, पहली बात तो, दूसरा खुशी बढ़ती जाती है, तीसरा नशा बढ़ता जाता है उसको कि मेरे पास बहुत पैसा है, और वो मदद भी कर सकता है, सहयोग भी कर सकता है। तो ये अगर हमारे अकाउंट में भी काफ़ी डिपॉजिट हो गया है अभी, तो हमारी खुशी बहुत बढ़ जाएगी, हम निश्चिंत भी होते जाएंगे कि हाँ सत्युग में अभी हमको ऊंच पद मिलेगा, हम दूसरों को सहयोग भी कर सकेंगे। इस प्रकार से ये गोडली प्रोजेक्ट का थोड़ा जो विचार चला था वो मैंने लिखा, और उस दिन क्लास में जो बात हुई उस प्रमाण मैंने आप सबके सामने रखा। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो आप मंथन करेंगे तो आप भी उसमें और नई नई पॉइंट बताना और मुझे ऐड कराना, तो मैं उसमें और ऐड करता जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। ये सुनते सुनते किसी को कुछ भाव प्रकट हुआ हो और बोलना चाहे तो आके बता बोल सकता है। हाँ गिरीश भाई बड़े बिजनेसमैन है, जरा उनको ये खाता कैसा लगा ये वो जरा अपना प्रतिभाव बताओ।
आज तक सिर्फ माया के चक्कर में प्लस और माइनस देखा था, लेकिन जब से इस संस्था से जुड़े हैं तो ये सब चीजों का नॉलेज हुआ, तो आज मेरी भी एक जो विंडो 8 जो चल रहा है ना वो खुल गई है। बहुत प्यारा लगा कि बहुत अच्छी बातें आज ललित भाई ने हमें हाईलाइट किया है, जो आज तक कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया था और ना इतना टाइम था, लेकिन जब से यहाँ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ रत्न लेके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित भाई आपका कि आपने एक हमारी एक ऐसा विचार आप हमारे शरीर में इंसर्ट करते हैं, जो पिछले मैं 1.5 साल 1.5 साल से जुड़ा हूँ, 2 दिन पहले भी ललित भाई से और दीदी से मुलाकात हुई थी, मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन अब मैं जहाँ जाता हूँ ना तो लोग मेरे को बहुत ही रिस्पेक्ट से और मेरे पे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले भी अट्रैक्ट होते थे लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये यहाँ आने के बाद ज़रूर कुछ मिला है, ज़रूर कुछ पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित भाई। वंस अगेन थैंक यू।
वो डिपॉजिट बहुत होंगी, अब इसमें भी आप अपना डिपॉजिट अकाउंट जो है ना
धीरे धीरे कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अभी वो फुल बीके हम नहीं हुए हैं, लेकिन बीके से जुड़े जरूर हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको पहचाना मतलब बीके हो ही गए पूरा, एक ही कंडीशन है बाबा को पहचाना बस। एक एक मिनट जो भी शेयर करना चाहिए आइए, अपने मन की बात बताइए, घर के ही बैठे हैं हम सबको ये कहीं।
ओम शांति। मेरे को सबसे पहले मैं भृगु भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को इस सेंटर से कनेक्ट किया। मैं इनके साथ पीएचडी कर रहा हूँ और उसके बाद में मेरे प्राइमरी टीचर वही थे मेरे स्कूल के, उसके बाद में सेकेंडरी टीचर मीना बेन हुई, फिर इशिता बेन, अभी फिर मेरा सौभाग्य देखो कि कितने सारे मेरे टीचर हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं मैं ऐसा कैसा स्टूडेंट हूँ और हर किसी से अलग अलग कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। यहाँ से पहले ये भाई तो मेरे साथ ही रहते, तो इनसे मैं रोज़ाना बात करता हूँ कि भाई मेरे को ये अनुभव हुआ है तो इसका ये मतलब है। तो कई बार मैं बोलता था कि भाई हम ऐसे कर्म करें कि खुद भी हम देवता समझ के अगर कुछ काम करें तो हमको कुछ किसी भी सोचने का वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ज्ञान का योग करें या फिर बाबा के साथ योग लगाएं। तो योग तो हम ऑलरेडी से लग ही जाएगा कि जब हम देवता जैसे काम करें तो अच्छे काम होते ही जाएंगे, तो हमें बनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम समझ के काम करें तो भी। और दूसरी बात, बाबा जैसे बोलते हैं कि हर टाइम योग मेरे से योग लगाओ, तो योग लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जैसे पहले लगता था कि भी भक्ति बहुत आसान सी चीज़ है, सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं, मगर इस जन्म के अंदर अगर हम गृहस्थ जीवन के अंदर रह के अगर बाबा को याद करते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं अपना खुद रूटीन में समझता हूँ कि आज दो दिन से मैं मुरली पढ़ने गया ही नहीं, तो मेरे को पता कि वो जो अनुभूति हो रही है अंदर, मेरे अंदर से ग्लानी हो रही कि मैं क्यों नहीं गया, तो वो फीलिंग्स जो होती हैं एक एक मिनट अगर हम याद करते हैं बाबा, तो उस खुशी का कोई अंत नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि उन खुशियों का मेरे अंदर भी कभी अंत ना हो और मैं हमेशा ऐसे ही सेवा करता रहूँगा, आगे भी अगर मेरे को कोई चांस मिला सेवा करने का तो मैं ज़रूर करूँगा। ओम शांति। बैंक में तो अभी मेरा करंट अकाउंट ही चल रहा है तो वो तो मेरे को पता ही है, अभी तो डिपॉजिट तक तो पहुंचने में मेरी उम्र लग जाएगी।
और कोई सुनाना चाहेंगे?
बहनों में से कोई नहीं आया?
ओम शांति।
बहन भाई भी बहनों के नाम से रखते हैं।
ऐसा है जो समय सेंटर पर या ईश्वरीय कार्य में लग जाए वही सफल होता है, ये मेरे को ऐसा लगता है। और दुनियावी काम करते हुए भी जब कभी कोई उलझन होती है और बाबा याद आता है तो वो काम जो है अपने आप ही सीधा हो जाता है। और खाते में जमा होता रहता है, लीकेज अभी है, आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, कोशिश करेंगे कि लीकेज को बंद करें। ओम शांति। अभी अकाउंट चेक नहीं किया अभी ऑडिट करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।
कंप्यूटर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इसका भी ऑडिट कर पाएंगे। सपोज़ आज मुझे अपना ऑडिट करवाना है कि मेरे खाते में कितना जमा है, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो क्या यही मेरा प्रश्न समझिए कि क्या क्या निमित्त आत्माएं ऑडिट, क्योंकि मैंने कई बार बहन जी को भी पूछा है कि अगर हम अच्छी स्थिति में है या आत्मिक स्थिति में है या जो भी बाबा अलग अलग स्थिति का कहते हैं कि आपकी ये ऊंची स्थिति में रहना चाहिए, तो वो ऊंची स्थिति हमारी है या नहीं, वो अगर मनमत से करे तो कुछ और भी जवाब मिलेगा। तो इससे आगे जो आपने जो बनाया है उससे आगे मैं ये आपको विनती करना चाहूँगा कि आप ऑडिट कोर्स भी इसका बनाएं कि जो पॉइंट्स चेकिंग पॉइंट्स से फटोफट निकल जाए कि आपका ये अकाउंट है, लीकेज इतना है, तो उसमें पुरुषार्थ और भी तेज कर पाएंगे हम। शांत
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। वैसे तो भाई साहब को हम जितना जानते हैं उस हिसाब से इतना तो बहुत पक्का है कि बहुत एक्यूरेट है, और जैसे आप लोगों ने अभी सुना तो इतना अच्छा बाइफरकेशन, हम सबको ज्ञान पता है लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारी पॉइंट्स पता थी लेकिन उनको मतलब एक्यूमलेट कर कर इतना अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत अच्छा लगा। और हम जैसे विजय भाई ने कहा तो मुझे भी बहुत राइट लग रहा था कि इसके आगे की अगर प्रोसेस लिंक्ड हो तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। थैंक यू।
ना वो भी मेरे सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएगी, इसलिए मुझे तो अच्छा ही है, मेरी तो डिपॉजिट बढ़ेगी क्योंकि उससे अनेकों को और भी प्रेरणा मिलती जाएगी, इसलिए मेरे लिए तो अच्छा ही है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी योग करेंगे, उसके बाद सब टोली लेके।